ایک انسان کو دوبارہ برائی کی طرف لانا ہے میں نے، یہ اتنا آسان نہیں ہے اور یہ پیسے اس کے لیے بہت کم ہیں۔
تم بتاؤ کتنے لوگ ہی؟
10 ملین۔ دو
یہ لو ایڈوانس 1 ملین۔ اگر یہ تم لے لیتی ہو تو تمہارے بچتے ہیں بقایا 4 ملین، جو کام ہونے کے بعد ملیں گے جب میں اور مسعود فریدہ کو مرا ہوا دیکھ لیں گے۔ اگر نہیں کرنا ہے تو میں پھر کسی اور کے پاس چلا جاؤں۔ بہت اچھے، اب ٹھیک ہے، تم فریدہ سے زیادہ عقل مند۔ اور سنو، اب تم نے پیسے لے لیے، اب تم کو فریدہ کو بچانے کا خیال بالکل نہیں آنا چاہیے۔ تم اس کو دوبارہ نشے ہی بنا دو، کیسے کرنا ہے یہ تم جانتی ہو۔ تم نے پیسے پکڑ لیا، اب ہر حال میں میرا کام ہونا چاہیے۔
ڈرو نہیں، میں صرف 1 ملین کے لیے اپنا کام تھوڑی خراب کروں گی۔
پہلی بار جب فریدہ کو نشہ دینا تو مجھے فون کر کے بتا دینا تاکہ میں پیسوں کا انتظام کر لوں تمہارے لیے۔
سلام بیٹی۔
میں ٹھیک ہوں، وہ دراصل میں نے اس لیے فون کیا تھا کہ کل آپ نے کہا تھا کہ آج ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، وہ میں نے اس لیے
تمہارے فون کا انتظار کر رہا تھا۔ میں
ڈاکٹر سے بات کی تھی میں نے۔
تو کس وقت جانا ہے؟
جس وقت تمہیں آسانی ہو، ڈاکٹر میری جاننے والی ہے،
ہم ابھی بھی جا سکتے ہیں اگر تمہیں کوئی پرابلم ہو۔
نہیں، مجھے کوئی مشکل نہیں ہے ایسی، بولے تو ابھی آ جاؤں۔ تو میں کیا آپ کے دفتر آ جاؤں؟
نہیں، میں تمہارے گھر کے باہر ہوں
گاڑی میں۔
اوہ حاجی صاحب، آپ یہاں کیسے آ گئے؟
تمہارے پاس آیا ہوں بھائی،
مجھے فون کر کے بتا دیتے۔
میں نے سوچا شاید سو رہی ہوگی،
انتظار کر رہا تھا تم اٹھو تو فون کروں۔
حاجی صاحب، آپ کب سے باہر کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہیں میرا؟
ابھی آیا تھا۔
میں واقعی بہت زیادہ شرمندہ ہوں آپ سے۔
تمہارے دشمن شرمندہ ہوں، نیچے آؤ تو چلیں۔
جی بالکل، میں آ رہی ہوں، خدا حافظ۔
لمبی سانس لو، درد تو نہیں ہو رہا؟ اب ہو رہا ہے درد؟
نہیں۔
اب ہو رہا ہے درد؟ اٹھ جاؤ، आइए जनाब। तुम बहुत ज्यादा नशा करती थी ना? यानी कितना नशा करती थी तुम? और ये तुम कब से कर रही थी?
तकरीबन 1 साल से, मगर छोड़ दिया है।
जब से इसे पता चला है कि ये हमला है, इसने नशा छोड़ दिया।
यानी कितने अरसे से?
4-5 दिन से मेरे ख्याल में।
मेरे ख्याल में तुमने हमला होने के लिए सही वक्त मुंतखब नहीं किया है।
क्या हाल है उसके डॉक्टर? बच्चे का पूछ रहा हूँ।
चेकअप के दौरान मुझे कोई खराबी नजर तो नहीं आई। मेरे ख्याल में सब कुछ सही है, लेकिन ये बेहतर होगा अगर आप तसल्ली के लिए सोनोग्राफी करवा लें। अब तो नशा छोड़ दिया है ना? बिल्कुल
जी,
सही है। ये तुम्हारे बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा।
डॉक्टर, मैंने सुना है कि नशा माँ के खून के जरिए बच्चे में मुंतकिल हो जाता है और उसको भी नशा ही बना देता है, क्या ये सही है? और अगर माँ अपनी कुव्वत इरादी से एक बार नशा छोड़ भी दे तो बच्चे को उसका नुकसान होता है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर माँ इतनी हिम्मत कर ले तो बच्चा भी बर्दाश्त कर लेता है। ये दिन तुम्हारे लिए जरा सख्त होंगे। मैं कुछ दवाएं लिख रही हूँ जो तुम्हारी मदद करेंगी नशे को छोड़ने में, लेकिन तुम भी खुद पर काबू रखना। अलबत्ता अगर तुम में खुद को रोकने की ताकत है तो इन दवाओं को मत लेना, ये तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। सोनोग्राफी का एक टेस्ट लिख के दे रही हूँ, ये तुम करवा लो। जब रिपोर्ट आए तो मुझे लाकर दिखाना।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर, तकलीफ दी आपको।
कोई बात नहीं जनाब।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
देर हो गई काफी, रश बहुत था।
बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से बहुत तकलीफ उठाई है आपने।
शर्मिंदगी क्यों, क्या कह दिया मैंने?
सिर्फ ये कहना है मुझे कि आप मुझे माफ कर दें, मेरी वजह से बहुत तकलीफ उठाई आपने।
सहमत नहीं, रहमत है।
बहुत शुक्रिया।
जिसकी जब भी तबीयत खराब होती है इसी के पास आती है, उसका हाथ बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह इसी के हाथ से तुम्हारी औलाद पैदा होगी।
क्या मसूद भी इसी डॉक्टर की क्लिनिक में पैदा हुआ था?
नहीं, जिस वक्त हम कॉलोनी में रहते थे अल्लाह ने उसी वक्त मसूद को हमें दिया था।
बहुत शुक्रिया हाजी साहब, शुक्रिया जो आप मुझे डॉक्टर के पास लेकर आ गए, क्योंकि मैं तो कभी भी यहाँ अकेले नहीं आ सकती थी। मैं ही डरती थी कि कहीं बच्चे के बारे में कोई गलत रिपोर्ट ना आ जाए। मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है आपने।
तकल्लुफ में कह रही हूँ या फिर वाकई ऐसी कोई बात है फरीदा?
एक बात पूछूं आपसे हाजी साहब?
बोलो बेटी।
अगर डॉक्टर कहती कि बच्चे में कोई नुक्स है तो क्या फिर भी आप मेरी इस तरह मदद करते?
मालूम है, मैं अपने कल के कहे हुए अल्फाज वापस ले चुका हूँ।
एक बात बताएं, ये अचानक आपकी सोच कैसे बदल गई? पहले तो आप कहते थे कि ऐसे बच्चे को नहीं पैदा होना चाहिए जो कि माजूर हो, शरीयत का हुक्म यही है।
हाँ कहा था, लेकिन गलत कहा था। सही बात तो यह है कि मुझे फतवे का पता ही नहीं है। जब मस्जिद के इमाम के पास गया तो मुझे पता चला। जब मैंने उनसे वहां जाके बात की तो पता चला कि जो मैं सोच रहा था वो गलत था।
मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ आपसे। कल मैंने आपसे जो बदतमीजी और बदअखलाकी की थी, मैं उस पर माफी चाहती हूँ आपसे।
मैंने बहुत बुरी बातें कही तुमसे, मुझे माफ तो कर दिया ना? मैं तुम्हें
میں بہت خوش ہوں حاجی صاحب، مجھے اپنی زندگی میں اس سے پہلے اتنی خوشی کبھی بھی نہیں ملی تھی، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں اس دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت ہوں۔ میرے بچے کے دادا واقعی کتنے اچھے انسان ہیں۔
اچھا ایک بات بتاؤ، تمہارے والد صاحب زندہ ہیں یا نہیں؟
پتا نہیں۔
نہیں پتا؟
نہیں حاجی صاحب، میرا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے ایک یتیم خانے میں آنکھ کھولی تھی حاجی صاحب، اور مجھے پتا ہے حاجی صاحب کہ میں واقعی آپ کی بہو بننے کے لائق نہیں، میں ایک بے بس لاچار لڑکی ہوں۔
ایسی باتیں مت کرو بیٹی، جو ماں اپنے بیٹے کو اتنے پیار اور محبت سے رکھ سکتی ہے وہ کیا، وہ ایک لائق ماں ہے اور ایک لائق بیوی۔
میں نے اپنے خاندان میں سے کسی کو نہیں دیکھا، آپ میرے خاندان کے پہلے انسان ہیں جسے میں اپنا کہہ سکتی ہوں۔ حاجی صاحب، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ نرجس خانم کو میرے بارے میں کچھ پتا نہ چل جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں ان سے کچھ نہیں کہوں گی۔ صرف اتنا کہہ دیجئے کہ میں اپنے بچے کو آپ کے بارے میں بتا سکوں، کہ میں اس کو بتا سکوں کہ اس کے دادا کتنے اچھے انسان ہیں۔ اجازت دیں کہ میں کبھی کبھار آپ کے دفتر آ جایا کروں، اور آپ دور سے بچے پہ ایک نظر ڈال دیا کریں۔ افسوس کہ آپ کے ہوتے ہوئے بھی بچہ آپ کو دیکھ نہیں پائے گا، یہ غلط ہے۔ میں چاہتی ہوں وہ شخص کو ضرور پہچانے جس نے اسے دنیا میں لانے کے لیے اس کی ماں کی بے حد مدد کی۔ اس کو پتہ چلے کہ آپ اس کے باپ سے کتنے مختلف انسان ہیں۔
محسوس شرمندہ ہے، آیا تھا میرے پاس، بہت ساری باتیں کر رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم نشہ کرنا چھوڑ دو تو دوبارہ تمہارے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔
نہیں حاجی صاحب، میں مسعود کو واقعی بہت چاہتی تھی، لیکن اس نے مجھے اتنی اذیتیں دی کہ یہ چاہت نفرت میں بدل گئی، میں آگے نہیں چل سکتی۔
اس طرح نہ کہو فریدہ بیٹی، مسعود نے بہت بڑی غلطی کی ہے، لیکن یاد رہے کہ تم نے بھی غلطی کی ہے۔ مسعود اس کا ازالہ کر سکتا ہے، جس طرح تم ازالہ کر رہی ہو اپنی غلطی کا، وہ بچہ جس کی خاطر تم نشے سے لڑ رہی ہو، اس کو باپ کی ضرورت ہے۔
آپ اس کے اتنے چاہنے والے دادا تو ہیں یا آخر، بس کافی ہے۔
میرا سورج ڈوبنے کو ہے بیٹی، موت کے بہت نزدیک آ گئے ہوں۔ میں جانتا ہوں مسعود کو معاف کرنا بہت مشکل کام ہے، اس سے بھی زیادہ سخت یہ ہے کہ تم اپنے بچے کے لیے لڑ رہی ہو۔
سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہوں حاجی صاحب۔
کچھ نہ کہو، میری باتوں پہ غور کرو، تم کیا چاہتی ہو اور کیا نہیں، اب تم ہمارا ہی حصہ ہو، تمہارا بچہ اور تم۔ وقت آنے پر میں نرجس کو بھی بتا دوں گا کہ اپنی بہو کو دیکھ لو۔
آپ یقین کریں میں نے نشہ بالکل چھوڑ دیا ہے، مسعود نے کہا ہے نا کہ میں نشہ کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتی، یا میں دوبارہ شروع کر دوں گی، مجھے پتا ہے۔
نہیں، مجھے یقین ہے تم نے چھوڑ دیا ہے، مجھے کوئی شک نہیں ہے۔
بہتر ہے کہ نرجس آنٹی کو بھی اس وقت تک کچھ نہ بتائیے جب تک مسعود کو یقین نہ آ جائے کہ میں نے نشہ چھوڑ دیا ہے۔ حاجی صاحب، آپ اس سے ایک وعدہ کیجیے۔
کیسا ہوتا؟
میں آپ کے بارے میں سوچ رہی ہوں، اور میں مسعود کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ دیکھیں، آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں، اگر میں اور مسعود ایک ساتھ نہیں رہ سکے اور ہم الگ ہو گئے تو آپ بچے کو اکیلا مت چھوڑیے گا۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کے لیے بہت مشکل ہے کہ آپ نرجس آنٹی کو کہیں کہ فریدہ نام کی ایک لڑکی مسعود کی زندگی میں آ چکی ہے، آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ میرے بچے کو میری طرح بے بس نہیں ہونے دیجیے گا۔
تم ہماری بہو ہو بیٹی، تمہارا بچہ ہم میں سے، ہم کسی بھی لمحے تم کو اور تمہارے بچے کو اپنے سے دور نہیں کریں گے، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔
माफ कीजिएगा मुझे, मैं भूल गई, मुझे अपने घर के लिए कुछ लेना था, क्या आप मुझे दुकान तक छोड़ देंगे? बहुत जरूरी है, माफ कीजिएगा।
तुम्हें जो कुछ चाहिए कागज पे लिख दो, मैं तुम्हें ला के देता हूँ।
नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, मैं खुद अगर पीछे कोने तक उतार दे तो मैं खुद चली जाऊंगी।
मुझसे तकल्लुफ है क्या?
नहीं, तकल्लुफ नहीं कर रही, माफ कीजिएगा, गलती हो गई।
ठीक है। खड़ा हूँ, तुम आ जाओ।
नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, आप जाइए, बदल चलना तो मेरे लिए अच्छा है।
ठीक है, मैं चलता हूँ, कोई काम हो तो फोन कर लेना।
जी बिल्कुल ठीक है, खुदा हाफिज।
براہِ مہربانی اپنا پیغام ریکارڈ کروا دیں۔
سلام فریدے، ابھی تک گھر نہیں پہنچی تم، فون تو اٹھا لو کم از کم۔ فریدہ، کام تھا ایک، میں تمہیں یاد کر رہی تھی بہت، خدا کی قسم بہت بے مروت ہو تم۔ تمہیں خدا کا واسطہ اگر گھر پر ہو تو فون تو اٹھاؤ، ایک دو ضروری باتیں کرنی تھی تم سے۔ میں تمہیں یاد کر رہی تھی، تمہارے لیے دل بڑا بے چین ہو رہا تھا، جب تم پریشان ہوتی ہو تو میں بات کرتی ہوں نا۔
سلام۔
سلام، کیسے بے مروت ہو، فون تک نہیں اٹھاتی میرا۔
کیا تمہیں یاد نہیں کہ یہ طے ہوا تھا کہ ہم کبھی بات نہیں کریں گے؟
کب طے ہوا تھا یہ؟ طے یہ ہوا تھا کہ اگر تم مجھ سے ہیروئن مانگو گی تو میں تمہیں ہیروئن نہیں دوں گی۔
اسی وجہ سے میں تمہارا فون نہیں اٹھا رہی تھی، ڈرتی ہوں کہیں دوبارہ لت نہ پڑ جائے۔
اوہ، تو کیا چھوڑی نہیں ابھی تک؟
چھوڑ دیا ہے، خدا کی قسم چھوڑ دیا ہے۔ اگر تم واقعی میری دوست ہو تو دوبارہ مجھے شروع مت کرنے دینا۔
مجھے پتا ہے مجھے کیا کرنا ہے، اگر تم مجھ سے مانگو گی بھی تو میں تمہیں دوبارہ نہیں دوں گی۔
سری جان، تم مجھے کچھ دنوں کے لیے اکیلا چھوڑ دو اور تنگ نہ کرو۔
مگر آخر کیوں بھائی؟ پہلی بات یہ کہ میں تمہیں یاد کر رہی تھی، اور میں تمہارے اس بچے کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں اس کی خالہ ہوں، تو پھر میں تمہاری دوست بھی تو ہوں، تمہیں اس حال میں اکیلا کیسے چھوڑ دوں؟ تو تمہیں اس حال میں اکیلا کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟
سری، خدا کا واسطہ میں تو تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتی، میں ڈرتی
ہوں۔ مگر آخر کیوں؟
کیونکہ تم مجھے پرانی باتیں یاد دلا دو گی، اور یہ میں نہیں چاہتی۔
بہت بہت شکریہ، یہ ہے میری دوستی کا جواب۔ میں اتنے عرصے سے تمہاری دوست تھی فریدہ جان، میں سوچ رہی تھی کہ تم بھی میری دوست ہوگی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جب تم نشے کو چھوڑو گی تو مجھے بھی چھوڑ دو گی۔
کچھ وقت گزرنے دو سری، اور ذرا میرا حال صحیح ہو جائے، میں خود کو کچھ سنبھال سکوں تو خدا کی قسم میں خود فون کروں گی۔
ٹھیک ہے، تم جیسا مناسب سمجھو۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر تم نشہ چھوڑنے کے بعد اکیلی نہ رہو تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، اور خود کو مصروف رکھو تاکہ دماغ نشے کی طرف نہ جائے۔ ابھی کتنے دن سے نہیں لیا؟
تقریباً 5-6 دن ہو ہی گئے چھوڑے ہوئے۔
بہت اچھا، تم جیت گئی۔ سب سے خطرناک دن یہی ہوتے ہیں، لیکن تم اپنے آپ کو گھر میں قید مت کرو، یہ تمہارے لیے اور برا ہوگا۔ کھانا وانا تو کھا رہی ہو نا تم؟
ارے بھائی،
تمہارے لیے تمہاری غذا بہت ضروری ہے اس وقت لڑکی۔ غذا لیتی رہو گی تو کمزوری نہیں ہوگی، اور کمزوری نہیں ہوگی تو طلب بھی نہیں ہوگی، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ جب میرا بھانجا پیدا ہو تو وہ بالکل تندرست ہو۔ اس کی خالہ اس پہ قربان۔ میں اس چھوٹو پہ ہاتھ پھیرنے کے لیے آنا چاہ رہی ہوں، بلکہ تم میرے گھر آ جاؤ، مجھے تمہاری بہت فکر رہتی ہے۔ اگر تم خود کو مار بھی لوگی تو میں تمہیں نشے کو ہاتھ لگانے نہیں دوں گی۔ آ رہی ہو نا تم؟
اوف، ٹھیک ہے، آتی ہوں۔ ٹھیک ہے،
آج رات میں ایک اچھا سا کھانا بنا کر تمہارا انتظار کروں گی۔ خدا حافظ۔
خدا حافظ۔
میں نے دیکھ لیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں نے آپ کا کیس لے لیا ہے۔
بہت بہت شکریہ آپ کا جناب۔
ہم وہاں کے دوسرے ورکرز پر دعویٰ کریں گے، اور انشاءاللہ آپ بہت جلد اپنے کام پر واپس چلی جائیں گی۔ البتہ شرط یہ ہے کہ کہیں وہ لوگ یہ ثابت نہ کر دیں کہ آپ کے نکالے جانے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کام پہ ہمیشہ دیر سے ہی پہنچتی تھیں۔
مگر میں تو 15 منٹ پہلے ہی کام پہ پہنچتی تھی وکیل صاحبہ، جس دن انہوں نے مجھے نکالا تھا اس دن بھی میں جلدی ہی پہنچی تھی۔ میں نے کبھی بھی اپنے کام میں کوتاہی نہیں کی، اس بات کی گواہی تو کارخانے والے بھی دیں گے۔
ٹھیک ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، پریشان بھی مت ہو۔ یا تو آپ اپنے کام پر واپس آ جائیں گی، یا اپنا کام چھوڑنے کی وجہ سے میں آپ کو آپ کے قانونی حقوق دلا کے رہوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔
اگر دیکھیں، اگر میں اپنے کام پہ واپس چلی جاؤں تو یہی بہتر ہے وکیل صاحبہ۔ میں ایک طالب علم ہوں اور میرا ایک چھوٹا سا بیٹا بھی ہے۔ یہ جو پیسے مجھے مل رہے ہیں، اگر ملنے بند ہو گئے تو مجھے بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ میرے حالات تو ویسے ہی بہت خراب ہیں، اگر یہ پیسے بند ہو گئے تو میرے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ میرے پاس تو اب کھانے تک کے پیسے نہیں ہیں۔
میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو آپ کے کام سے نہ نکالا جائے۔
آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اب میں کیا کروں جناب عالی؟
کچھ نہیں، آپ صرف میرے فون کا انتظار کیجیے، بس میں خود سارے معاملات کو نبٹ لوں۔
خدا آپ کو اجر دے۔ اچھا، خدا حافظ۔
خدا حافظ۔ ناہید بیٹا۔
جی جناب، بولیں۔
ان سے پیسے مت لینا تم۔
جی اچھا،
کتنے پیسے دوں میں آپ کو؟
کچھ نہیں، آپ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔
کیوں ضرورت نہیں ہے بھائی؟
اس بورڈ کو دیکھیے، خود ہی پتہ چل جائے گا۔
بہت بہت شکریہ۔
کوئی بات نہیں،
خدا حافظ۔
کیا میں اس عورت کی معلومات کروں؟
کیسی معلومات؟
یہ کہ یہ ضرورت مند ہے بھی کہ نہیں۔
نہیں، ضرورت ہے۔
کرنے دینا مجھے معلومات، اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔
کہا نا، اس کی ضرورت نہیں ہے ناہید بیگم۔
آپ تو ہر ایک پر بھروسہ ہی کر لیتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔
10 दफ़ा तुमसे कहा है अगर नर्जिस बीवी को किसी की मालूमात करवानी होगी तो वो खुद तुमसे बोलेंगी, ये जा जाके पूछने की क्या ज़रूरत है?
ये खुद तो मुझे कभी किसी के बारे में कहते ही नहीं है, इनकी नज़र में तो लगता है हर बंदा बेबस और लाचार है। अगर इनके पास 20 लोग आएंगे तो इसमें सिर्फ एक का कहेंगे कि इसका पता करो जाके।
हाँ ठीक है, पर ये तुम्हें करने की क्या ज़रूरत है?
हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे क्या ज़रूरत है? हाजी रजा जो इनके शौहर हैं वो कुछ नहीं कहते तो मैं क्यों कहूँ? जी फरमाइए।
सलाम।
सलाम हाजी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं?
खुदा का शुक्र है। नर्जिस बेगम हैं?
जी जी हैं, आप होल्ड कीजिए मैं अभी देती हूँ। नर्जिस जान, हाजी साहब हैं। सही है।
कैसे पागल है?
हाजी साहब का फोन था।
हाँ सुनो, अगर मैं हाजी साहब की जगह होती तो कभी अपनी बीवी को इस तरह पैसे लुटाने नहीं।
पैसे उनके अपने हैं।
नहीं, सब पैसे घर के होते हैं। जब बंदा एक बार शादी कर लेता है तो सारी कमाई के पैसे घर के ही होते हैं। समझ में आया तुम्हारी?
शरा और कानून दोनों ही ये कहते हैं कि औरत जो कमाती है और जो कुछ उसे माँ बाप से विरासत में मिलता है वो उसका अपना होता है। सिर्फ मर्द की जिम्मेदारी होती है कि वो घर का खर्चा चलाए, ना ही बीबी।
अच्छा अच्छा, मेरे सामने ज्यादा बहस मत करो, ज्यादा काजी बनने की जरूरत नहीं है। 3 साल पहले का क्या भूल गई तुम?
तुम्हें क्या हो गया इस वक्त? रेस्टोरेंट जाने की क्या सूझी?
कुछ नहीं हुआ। क्या तुम्हारे वकील होने की वजह से मुझे अब रेस्टोरेंट जाने के लिए भी कोई परमिशन लेनी पड़ेगी?
नहीं हाजी साहब, आपने कह दिया, आप दलील की कोई जरूरत नहीं, मैं आपकी खिदमत में हूँ।
खिदमत मेरी तरफ से? बस इफ्तार के बाद उसी जगह पे आ जाऊँगा।
ठीक है
ठीक है, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
वादा करें अगर मैं और मसूद एक साथ नहीं रह सके और हम अलग हो गए तो आप बच्चे को अकेला मत छोड़िएगा।
आज मेरा दिल चाह रहा है कि अपने हाथ से तुम्हारे लिए चाय बनाऊं।
ये सही है कि इस जगह की चाय और हमारी चाय में फर्क है, लेकिन मेरे अलावा किसी को यह हक नहीं कि तुम्हारे लिए चाय निकाले। कह दिया ना बस।
आज इस रात मेरी खातिर फ्लेवर चाय पियोगी या उसी तरह ताने देती रहोगी?
अगर तुम साफ साफ नहीं बताओगे कि तुम मुझे आज की रात यहाँ क्यों लाए हो तो मैं ताने देती रहूंगी।
यहाँ लाने की एक वजह है कि मसूद के सामने बात नहीं करना चाहता था।
इस दफा फिर उसने कोई बुरा काम किया है और तुम चाहते हो कि मैं उससे लड़ूं?
इत्तेफाक से बुरा काम तो हुआ है। हाँ बुरा काम तो हुआ है, इसलिए तुम यहाँ लाया हूँ कि राजी कर सकूँ।
क्या क्या है आखिर?
नर्जिस, हम मसूद से बहुत गाफिल थे।
मैं तुमसे साफ साफ कह रही हूँ कि बता दो कि असल बात क्या है।
डरो नहीं। देखो रजा जान, मैं मसूद से उतनी खफा नहीं हूँ जितनी कि पहले थी। वो तकलीफें और अजियतें जो उसने मासूमा को पहुँचाई थी उसकी वजह से बहुत लड़ चुके हूँ, और अब सही बताऊँ मैं उस पर शर्मिंदा हूँ।
अच्छा नर्जिस, नर्जिस तुम्हारी ये सारी बातें मुझे तसल्ली देती हैं। मसूद जवान है नर्जिस, खुदा भी यही कहता है कि शादी कर लो इससे पहले कि हराम में पड़ जाओ।
यानी मसूद मासूमा के 40वें तक भी सब्र नहीं कर सकता क्या? शादी करना चाहता है? उसको जाके समझाओ कि मासूमा की मौत को अभी 2 हफ्ते भी नहीं गुजरे हैं। अभी ये बातें बहुत बुरी हैं। उसको बोलो कि मासूमा के 40वें तक तो सब्र करें।
नर्जिस,
मसूद ने अभी तक सब्र नहीं किया। बहुत पहले उसका सब्र खत्म हो चुका। दो साल पहले शादी कर चुका है मसूद, उसकी बीवी उम्मीद से है नरजिस।
तुम मजाक कर रहे हो है ना?
नहीं नरजिस, जो कुछ मैंने तुमसे कहा इत्तेफाकन सच है।
उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उसे चाहिए, उसे चाहिए शादी कर ले।
मसूद ने कहा है ये सब कुछ कहने के लिए?
नहीं, खुदा की कसम मैं काफी वक्त हुआ मुझसे बात नहीं करता। अगर बस शादी कर ले और खुश रहे तो मैं भी खुश रहूंगी।
वो तो मुझे पता है, लेकिन क्या तुम दूसरी औरत को बर्दाश्त कर लोगी?
जरूरी नहीं कि ऐसा हो सकता है कि अपने बैग के साथ मैं मोहम्मद के घर चली जाऊं।
नरजिस, नरजिस बेगम,
मासूमा को ये पता था, मुझे यकीन है कि वो समझ गई थी, इसी वजह से चली गई, इसी वजह से मर गई।
ये क्या बातें ले बैठी बेगम, अपने आप को कंट्रोल करो।
क्यों मसूद ने हमारे साथ ऐसा किया रसा? क्यों?
बस करो बेगम, मसूद बेटा है हमारा, जवान है, सही है, उससे बर्दाश्त नहीं हो सका, लेकिन ये बर्दाश्त का काम इतना आसान नहीं होता नरजिस। इस तहमुल की शराइत आसान नहीं थी।
वो बेरहम है, बहुत बेरहम।
मसूद ने गलती की है और उससे ज्यादा उसकी बीवी को डांट पड़ चुकी है। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ कि मसूद के सामने तुम दोबारा ये बातें मत करो और भुला दो जो कुछ भी हुआ था। तुम्हें यहाँ लाने का मकसद ये भी है कि अब उसको माफ कर दो।
और क्या क्या करेगा मसूद और हम उसको इसी तरह माफ करते रहेंगे? उसके जो दिल में आए वो करता चला जाए। मैं माफ कर दूं, तुम माफ कर दो, मासूमा भी माफ कर दो।
मसूद खुद बहुत बड़े अजाब में है नरजिस, वो बहुत परेशान भी है। वो इतना परेशान भी है कि हमारे न जानते हुए भी अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है और वो उसको अदालत में भी घसीट चुका है। बस समझ जाओ कि मसूद किस हाल में है। खुद को कंट्रोल करो बेगम, हमें उसे सहारा देना चाहिए, हमें उसकी फिक्र होनी चाहिए।
वो लड़की आखिर है कौन?
उसका नाम फरीदा है, वो बुरी लड़की नहीं है।
वो लड़की जो किसी की जिंदगी में छुपकर अचानक इस तरह आ जाए, वो अच्छी लड़की है। रजा, बस रहने दो तुम।
बेगम तुम इतनी बदल कैसे गई? किसी से मिले बगैर तुम कैसे अंदाजा लगा सकती हो कि वो सही है या गलत?
तुम्हें क्या हो गया है रजा? तुम कितनी आसानी से ये सारी बातें कर रहे हो मुझसे?
आसानी से नहीं बोला, मुझे भी यकीन नहीं आया था। उस पर चीखा चिल्लाया, लड़ाई की उसके साथ, और जिंदगी में पहली बार मसूद को थप्पड़ मारा।
बहुत अच्छा किया तुमने।
नहीं, गलती की थी मैंने। उसकी हरकत गैर अखलाकी तो है लेकिन गैर शरई नहीं। उन दोनों ने शरण और कानूनी शादी की है बेगम। और सिर्फ शर्मिंदगी के बायस इस बात को उन्होंने हमसे छुपा के रखा और बहुत सारी तकलीफें सही हैं। इस गलती का एहसास हमें ज्यादा नहीं दिलाना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो दोनों मजबूर होकर तलाक ले लें। अगर ऐसा हुआ तो ये गुनाह मेरे और तुम्हारे सर पे आएगा नरजस।
मगर तलाक क्यों लेना चाह रहे हैं वो?
कुछ मुश्किलात हैं उनकी जिंदगी में, लेकिन उसकी एक वजह ये खौफ है कि हम समझ ना जाएं। खुदा का शुक्र है कि वो पशेमान है और इस बात के बारे में नहीं सोच रहे, यानी मैंने उन्हें मुंसरफ कर दिया है। फरीदा कोई बुरी लड़की नहीं है। उस रोज जब वो अदालत से दफ्तर आई थी उसने अपना तारुफ खुद कराया था। मेरा भी ऐसी हाल था, शायद इससे भी मतलब। मेरे पास मदद के लिए आई थी वो, मजलूम थी बेचारी। लेकिन इसके बाद फिर मैंने उसको भगा दिया था। लेकिन जब तुमने बताया कि तुमने उस दुनिया में यानी बरज़ख में मेरा क्या हाल देखा था, तो मैं समझ गया कि मैं गलती पे हूं नरजिस। कहीं तुमसे भी वो गलती ना हो जाए। उस बच्ची का कोई गुनाह नहीं है नरजिस, वो मजलूम और बेकस है। वो बच्चा जो यतीम खाने में बड़ा होता है उसको खुदा ही ने भेजा है, जैसे कि मसूद को भेजा था, और फिर हम उसके पुश्त पनाह बन गए थे। हमें ये काम करना होगा।
खड़े हो जाओ राजा।
तुम काबू में रहना नरजिस, अभी जब घर पहुंचना तो मसूद पर गुस्सा मत होना। तुम उसको कुछ मत कहना, इस वक्त वो खुद बहुत परेशान है। वो अपना गुस्सा फरीदा पे निकालेगा।
मैं अपने घर नहीं जा रही, मुझे उस लड़की को देखना है।
नरजिस बेगम, वो लड़की बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। अगर तुम आ जाओगी तो
मैं उसे देखना चाहती हूँ राजा, और उससे बात करना चाहती हूँ। मैं उससे लड़ूंगी नहीं।
तुम्हें कह रही हो कि तुम्हारे ससुर अच्छे हैं?
हाँ बाबा, मैं तो पहले से जानती हूँ कि वो एक अच्छे इंसान है। पहले तो वो मुझसे बहुत खफा थे, नाराज थे कि मैं झूठी हूँ, लेकिन अब वो इतने अच्छे हो गए जरिए कि मैं क्या बताऊँ तुम्हें। खैर छोड़ो, जमीन और आसमान का फर्क है बाप और बेटे के अंदर। हाजी साहब वाकई इतने अच्छे हैं जितनी मसूद उनकी तारीफ किया करता था।
मेरे ख्याल में तो वो काबिल भरोसा इंसान नहीं है।
मगर क्यों?
एक बंदा जो एक दिन लड़ाई करे और उल्टी सीधी बकवास करे और कहे कि बच्चे को जाया कर दो, और फिर वो इंसान दूसरे दिन अचानक अच्छा हो जाए, पैसे वगैरह भी दे और बच्चे पे प्यार जताए, तो फिर मुमकिन है कि वो कल फिर खराब हो जाए और फिर बकवास करने लगे। अगर मुझसे पूछो तो इस तरह के इंसान पर एतमाद करना सही नहीं है।
ओ भाई, पहली बार उनसे गलती हुई थी, उन्होंने खुद कहा। उनको तो पता ही नहीं था कि बच्चे को जाया करना हर तरह से हराम होता है।
हो सकता है कि फिर वही गलती कर बैठे
दोबारा से।
हाँ जी, ये हाजी साहब जो हैं, ये मजहबी इंतहा पसंदों में से हैं, जो ये सोचते हैं कि मौलवी ने जो कुछ लिखा है वो सब सही है। लेकिन मैं समझती हूँ कि हाजी साहब ने जो पहले दिन कहा था वही ठीक था। इस बच्चे को दुनिया में रखना बेकार है फरीदा।
जरी, तुमने फिर से बकबक शुरू कर दी।
बकबक नहीं कर रही हूँ फरीदे, मैं फिर यही कहूँगी कि तुम इतना ज्यादा नशा करती रही हो कि जो बच्चा तुम्हारे पेट में है या तो बीमार होगा या माजूर होगा। उस बच्चे पर कुछ न कुछ बुरे असरात जरूर होंगे। मैं तो यही कहती हूँ कि इसे दुनिया में न आने दो, वरना बच्चे की उम्र भी जाया होगी और तुम भी परेशान होगी।
मैं नशा करने वाली औरत नहीं हूँ, ये तुम क्या कह रही हो? मेरा बच्चा बिल्कुल सही सालिम है।
गुस्सा क्यों कर रही हो फरीदा? सही है बस। अच्छा किया तुमने जो नशा छोड़ दिया, मगर ये काम है बड़ा मुश्किल। इसको छोड़ने से बाज़ दफ़ा हालत बहुत खतरनाक हो जाती है, बंदा मर भी सकता है।
मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ।
अभी कोई तकलीफ तो नहीं है ना?
हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक।
सही बताऊं बहुत कमजोर हो गई हो, आंखों के नीचे हल्के पड़ गए हैं।
जरी बकवास नहीं बंद करोगी क्या तुम?
तुम्हारी कसम सही कह रही हूँ, हो सकता है कि इसे अचानक छोड़ना तुम्हारे तुम्हारे बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो। मैं सही कह रही हूँ, तुम्हारे बच्चे को भी इस वक्त इसकी बड़ी तलब हो रही होगी।
नशे को छोड़ना किसी भी तरह नुकसानदेह नहीं होता जरी,
लेकिन अचानक छोड़ना जो है वो खतरनाक है। तुम इसे आहिस्ता आहिस्ता अपने से दूर करो ताकि बच्चे को इसका नुकसान ना हो। आहिस्ता आहिस्ता छोड़ो।
सॉरी, इसको ले जाऊं यहाँ से।
मगर क्यों?
ताकि मैं दोबारा शुरू ना कर सकूं।
अगर तुमने इसे वाकई छोड़ दिया है तो इसकी तरफ देखो भी मत, खुद पर काबू करो और इस्तकामत दिखाओ। असल इम्तिहान तो यही है कि तुमने छोड़ा भी है कि नहीं। मैं अभी पता है क्या सोच रही थी, तुमने मसूद की खातिर हीरोइन छोड़ तो दी है और उसके बच्चे को भी पैदा करना चाहती हो। मैं ये सोच रही थी कि हाजी साहब क्या तुम्हें अपना बेटा दे देंगे? नहीं बेवकूफ, जब तुम इससे फारिग हो जाओगी तो उस वक्त मसूद तुम्हें पैर की जूती की तरह उतार फेंकेगा और तुम्हें पहचानेगा भी नहीं बिल्कुल, और आखिर तुम्हारा मुकद्दर तलाक होगा। उस वक्त हाजी साहब ये बोलेंगे कि अगर वो तलाक दे रहे तो मैं क्या करूँ फिर?
अगर मसूद चाहेगा तो भी मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती, मैं खुद उससे तलाक लूंगी। बाप बेटे दोनों पर थूक के चली जाऊंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं।
पहली बात तो ये कि अगर हाजी साहब भी अपने बेटे के साथ मिल गए तो क्या करोगी तुम? यकीनन बच्चा भी उनका होगा। जिस दिन ये बच्चा दुनिया में आएगा उस दिन बहुत सी बातें तुम पर खुलेंगी। होगा ये कि वो तुमसे तुम्हारा बच्चा छीन लेंगे और तुम्हें बाहर निकाल देंगे। दूसरी बात, फर्ज किया अगर बच्चे को तुम अपने पास रख भी लेती हो तो आखिर तुम उसे पालोगी कैसे? पैसे कहाँ हैं? तुम्हारे फारिग होने के बाद मसूद तुम्हें तलाक दे देगा और उन 200 मिलियन का तो कहीं पता भी नहीं होगा, क्योंकि उसकी इज्जत तो तुम बाबा के सामने उतार ही चुकी हो। अभी तो मुमकिन है कि वो तुम्हें पैसे दे भी दे, लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो पानी सर से ऊपर हो जाएगा और तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। तुम एक अजाब में फंस चुकी होगी और ये बच्चा एक वबाल बन जाएगा।
काम करूंगी, एक घर लूंगी किराए पे, अपने बच्चे की परवरिश खुद करूंगी।
वो बच्चा तुम्हें वाकई बहुत अजीज है, लेकिन तुम्हारी हालत काफी खराब है, पहले अपने आप को तो देखो। मैं बहुत से ऐसे हीरोइनों को जानती हूँ जिन्होंने अपने बच्चे बेचे और हीरोइन खरीदी।
मैं उसे हमेशा के लिए छोड़ चुकी हूँ।
सिर्फ छोड़ी है लेकिन कब तक ये किसी को नहीं पता। सच कहूँ तो मुझे इस हीरोइन की सफेदी तुम्हारी आंखों में है। देखा, अब इस तरफ मत देखो तुम, मुझे लग रहा है कि तुम्हारा दिलो दिमाग इसकी तरफ खिंच रहा है। कब तक इसकी तरफ देख देख कर अपनी आंखें बंद करती रहोगी? हीरोइन के टूटते नशे में खुद को संभालना बहुत मुश्किल है, बड़ी आसानी से शैतान हावी आ जाता है और जब एक दफा आ जाता है तो फिर आसानी से नहीं छोड़ता वो।
बस करो सरी।
उस रोज जब पार्क में तुमने कहा था कि मैं छोड़ रही हूँ तो मैंने कहा था कि छोड़ दो
सरी, बस करो।
लेकिन आज तुम उस दिन वाली फरीदा नहीं हो। तुम ऐसी बनो कि आखिरी उम्र तक तुम्हारे पास पैसा हो और अपनी परेशानियों को धुएं में उड़ा सको। 200 मिलियन बहुत बड़ी रकम है, इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। आखिर क्यों अपनी किस्मत को ठोकर मार रही हो और उन पैसों को छोड़ रही हो? इन पैसों के साथ तुम अपनी पूरी जिंदगी बड़ी ऐशो आराम के साथ गुजार सकती हो फरीदा।
जरी अपना मुंह बंद करो, जरी चुप रहो तुम।
सही है, लेकिन अभी भी मैं तुमसे यही कहूंगी कि दौलतमंद बनने का रास्ता अभी तक खुला हुआ है। हाजी साहब तुमसे पहले ही दिन बहुत बातें कर चुके हैं और अपनी जाती बातें बता चुके हैं। तुम्हें पता चल गया है कि मसूद की माँ एक वीक पॉइंट है और इसी से तुमने फायदा उठाना है। इसी पॉइंट को तुम अपने हाथ में रखकर तुम 200 मिलियन से भी कहीं ज्यादा रकम उनसे आसानी से खींच सकती हो।
सर तुम चुप हो रही हो या मैं जाऊँ यहाँ से?
उसी घर में जाओगी जो मसूद ने लिया है तुम्हारे लिए किराए पर, कल जब वो तुम्हें तलाक दे देगा और फिर जब उस घर से तुम निकाली जाओगी तो कहाँ जाओगी फिर तुम? फिर हाजी साहब की भी कोई जिम्मेदारी ना होगी क्योंकि तुम बहू नहीं होगी, बच्चा भी उनके पास होगा। सड़कों पर कुत्ते की तरह फिरोगी। अभी भी वक्त है समझने का,
अभी भी तुम्हारे पास वक्त है उस बेवफा इंसान की जेब को खाली करने का। उस बच्चे से क्यों मोहब्बत कर रही हो जिसकी रगों में उस बेवफा इंसान का खून दौड़ रहा है तुम अच्छी तरह जानती हो फरीदा।
मैं बच्चा रखना चाहती हूँ। उसकी रगों में मेरा खून है। मैं इतनी सालिम नहीं हूँ।
बच्चे पैदा करने के लिए बड़ा वक्त है तुम्हारे पास, बहुत ज्यादा। तसल्ली रखो तुम। हम औरतों को इस दुनिया में इसलिए भेजा गया है ताकि हम ऐसे मर्दों की जेबों को खाली कर सकें।
बहुत घटिया हो तुम सरी, बहुत गंदी सोच है। अपनी बातों से मुझे बहकाना चाहती हो तुम?
समझ जाओ तो यही अच्छा है, वरना मसूद के बच्चे के साथ सारी जिंदगी रुलती रहोगी तुम। पैसे वाला बेवकूफ एक अकलमंद फकीर से अच्छा होता है।
खुदा करे तुम मर जाओ सरी, खुदा का कहर तुम पे नाज़िल हो। मैं छोड़ चुकी हूँ, बच्चा चाहिए मुझे।
अभी बहुत वक्त पड़ा है तुम्हारे पास, माँ बनने के लिए बड़ा वक्त है, लेकिन किसी सही आदमी के बच्चे की माँ। इस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत है फरीदा।
तुम कितनी नीच औरत हो सरी, इतनी घटिया। तुम भी और मसूद भी दोनों।
अच्छा तो फिर तुम क्यों उस बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती हो जहाँ मुझ जैसे और मसूद जैसे जलील इंसान रहते हैं?
نمانی وطنم